श्लोक नंबर 15। रक्ताशोकश्चलकिशलयः केसरश्चात्रकान्तः प्रत्ययासनौ कुवरवकृतिर्माधवीमण्डपस्य एकः शख्यास्तवशः मया वामपदाभिलाषिः साङ्क्षत्यन्यो वदनमन्दिराम् दोहवक्षद्मनात्ययः। अन्वय अत्र कुरवकृतेः माधवीमण्डपस्य प्रत्यासनौ चलकिशलयौ रक्ताशोकः कान्तः केसरश्च एकः मया सह तव सख्याः वामपदाभिलाषी अन्यो दोहदक्षद्मना अस्याः वदनमदिरम् काङ्क्षिति। व्याख्या अत्र क्रीडाशैली कौरवभृते कुरक्रीवीक्षा वर्णस्य माधवीमण्डपस्य अतिमुक्तलतागृहस्य प्रत्याशनौ समीपवर्तिनौ चलकृशलयः चञ्चलपल्लवः रक्तशोकः अशोकवृक्षविशेषः कान्तः मनोहरः केसरश्च बकुलश्च अस्तः स्त इति शेषः एकः तयोरन्यतरः पूर्वोद्दृष्टत्वा अशोकः इत्यर्थः मया यक्षेण सह समम् तव भवतः सङ्ख्याः सखीभार्ययाः सखीभार्यया अपि सखि इति चिरन्नन्तव्यवहारः मत्प्रियायाः इति भावः वामपदाभिलाषि दक्षिणेतरचरणप्रहाराभिलाषि दोहदक्षपच्छद्मनेति चतुश्चरण पदमन्त्रा अपि सम्बन्धनीयम् अन्यः अपरः केसर इति भावः दोहदच्छद्मन वृक्षादिसंस्कारकद्रव्याचेन अस्याः तव सख्याः मत्प्रियाया इति भावः वदनमदिरा गण्डुकम् मध्यम् मया सह इति तृतीयचरणस्थम् पदद्वयम् मन्त्रा अपि सम्बन्धनीयम् काङ्क्षति इच्छति निथत्समयात् पूर्वमेव विकासार्थम् इति भावः सरलार्थे मेघ अत्र क्रीडा पर्वते कुरवका अवरणीपेतस्य माधवलीलतामण्डपस्य रक्तशोको वकुलश्च निकटवर्तिनौ स्तः तत्र रक्ताशोको मया सह मत्प्रिया वाम चरणाघातम् वकुलश्च गण्डुशम् मध्यम् काङ्क्षति। अनुवादे मेघ यहाँ ब्रैकेट इस क्रीड़ा पर्वत पर ब्रैकेट बंद कुरवक वृक्षों के आवरण से युक्त अति मुक्तलता गृह के समीपस्थ चंचल पल्लवाश संपन्न लाल अशोक और सुंदर वकुल ब्रैकेट मौलश्री ब्रैकेट बंद ये दो वृक्ष हैं। इनमें एक लाल अशोक साथ तुम्हारी सखी ब्रैकेट मेरी प्रिया ब्रैकेट बंद है बाएं पैर के ताड़न का अभिलाषी है। दूसरा वकुल वृक्ष दोहद वृक्ष आदि के संस्कारक द्रव्य के बहाने से इन मेरी प्रिया की मुख स्थित मदिरा को चाहता है। टिप्पणी कुरवक वृतेह कुरवक का एवं वृतिः यस्य सह तस्य अम्लानस्तु शाह महासह तत्र सोड़े कुरवक इत्यमरह कुरवक वसंत ऋतु में होने वाला पुष्प विशेष है। इसका वर्णन उत्तर मेघ के द्वितीय श्लोक में भी कर चुके हैं। माधवी मंडपस्य मधौ ब्रैकेट वसंते ब्रैकेट बंद भवा माधव्यः तत्र भव इत्यण स्त्रीत्व विवक्षायाम् किं धारणयै त्यादिना द्विप मधु प्लस कण प्लस गिप माधवीना मंडप तस्य बसंत ऋतु में होने से अभिमुक्त लता को माधवी भी कहते हैं। अतिमुक्त पुंडरक शाद्वा शक्ति माधवी लता इत्यमर प्रत्याशन प्रति प्लस आंग बराबर शब्द बराबर कतः ब्रैकेट कर्तरी ब्रैकेट बंद चल किशलय चलंती चलानी पचाद्यक्ष चल प्लस अच चलानी किशलयानी यस्स चल किशलय अर्थात चंचल पल्लवों से युक्त ऐसा विशेषण देने से रक्ता अशोक मेरी प्रिया से बाएं चरण से ताड़न के लिए जैसे बद्धांजलि हो रहा है ऐसा अर्थ ध्वनित होता है। रक्ताशोक रक्तश्चा असौ अशोक अशोक के दो भेद होते हैं जैसे कि अशोक कल्प में लिखा है प्रसून कैरस अशोकस्तु श्वेतो रक्त इति था बहुसिद्धिकर श्वेतो रक्तो अत्र स्मरवर्धन सफेद फूल वाला और लाल फूल वाला इस प्रकार से अशोक के दो भेद होते हैं उनमें सफेद फूल वाला बहुत सिद्धि करने वाला और लाल फूल वाला काम वर्धक होता है। कांत कम प्लस कत केसर अथ केसर वकुलो वंजुल इत्यमर एक एके मुख्यान केवला इत्यमर संख्या आलिह सखी वयस्या च त्यमर यहाँ पर सखी पत्नी को भी सखी पद से व्यवहार किया गया है। वाम पादाभिलाषी वामश्चा असौ पादः तम अभिलाष इति तक्षीलः ब्रैकेट वाम पाद अभिलाष ब्रैकेट प्लस अभि प्लस लस प्लस अणिनी उपपद ब्रैकेट बंद दो हद छद मना इस पद का यहाँ पर भी संबंध करना चाहिए। असमय में भी वृक्ष को पुष्प विकास के लिए कवियों का समय प्रसिद्ध ही नीचे के श्लोक में दर्शाया गया है। स्त्रीणाम दर्शात प्रियंग गुर्विक्षित वकुलह सिंधु गन्नुसंकात पादाधात दशोकस्ति ककुरवकौ विक्षणा आलिंगनाभ्याम मंदारो नर्मवाक्यात् पटो मृदु हसना चंपको वक्त्रवाताच्युतो गीतान्मेरो विकसित च पुरो नर्तकात् कर्णिकारः अर्थात प्रियंगु वृक्ष इस सुंदर स्त्रियों के स्पर्श से वकुल प्रकट मौल श्री प्रकटबन सुंदरी के मुख स्थित मध्य के सोचन से अशोक सेचन से अशोक वृक्ष बाएं चरण से आघात से तिलक सुंदरी के देखने से कुरवक आलिंगन से मंदार निल्लगी के वाक्य से चंपक सुंदर तथा कोमल हास्य से आम का पेड़ मुख की हवा से सुमेरु गाना से और कर्णिका वृक्ष सुंदरी स्त्री के नृत्य करने से विकसित होता है। यहाँ पर यक्ष ने अपने साथ अशोक वृक्ष को भी अपनी प्रिया के बाएं चरण के आघात का अभिलाषी व्यक्त किया है। जैसे अशोक वृक्ष सुंदरी के पदाघात से विकसित होता है उसी प्रकार यक्ष भी रोमांचक युक्त होता है। लोह छद्म दोहस्य छद्म तेन गर्भिणी की इच्छाओं को भी दोहत कहते हैं। प्रकृति में असमय में भी वृक्ष आदियों का पुष्प आदि की उत्पत्ति के लिए संस्कारक द्रव्य को दोहत कहा गया है। जैसे कि शब्द वर्ण में है तरु गुल्मलतादि नाम काले कुशलैः कृतम् पुष्पाद्युत्पादकम् द्रव्यम् दोहदम् चातुत्तात्क्रिया दोहद की जगह कहीं कहीं पर दोहल भी लिखा गया है। कपटोस्त्री व्याजदम्भो पद्म छन्म कैतवे इत्यमरः बदन मदिराम बदनस्य मदिरा ताम कांक्ष प्लस नट प्लस टीप इस श्लोक में सहयोक्ति अलंकार है, उसका उदाहरण ऐसा लक्षण चंद्रालोक में दिया गया है। सहोक्ति सहभावश्चेद् भासते जनरंजनः दिगंतमद् मध्यस्तकृतिः प्रत्ययर्थम् भीषः। श्लोक नंबर 16। तन्मध्ये च स्फटिकफलका कांचनी वायः सृष्टिमूले बद्धा मणिभिरन प्रौढ़वंश प्रकाशैः नालैः शिंग्या वलयम् शुभगैर्निति कांतया मेया मध्यास्ते दिवशवी गमे नीलकंठः सुहृदयः। अन्वय च तन्मध्ये अनति प्रौढ़वंश प्रकाशैः मणिभिः मूले वद्वा स्फटिक फलकाः कांचनी वायसयष्ठि सिंजाव वलय सुभगैः तालैः मेकांतया नर्तितो वः सुहृत नीलकंठो दिवस वीगमे याम अध्यास्ते। व्याख्या हे मेघ च किंच तन्मध्ये रक्ताशोक केशरांतरे गृह मध्ये वा अनति प्रौढ़वंश प्रकाशैः अनति कठोर रेणु कांतिभिः मणिभिरत्नैः मकर तैर इति भावः। मूले पाद्ये बद्धा नद्धा कृत वेगदिकीति भावः तादृशी स्फटिक फलका स्फटिक मयपीठा कांचनी सवर्णैः वायश्रेष्ठे निवासदण्डः अस्थितिशेषः सिंजावलय शुभगैः ध्वनियुक्त शंकरम्यैः तालैः करतलवादनैः मे मम कांतया प्रियया नर्तितः लीलायां शिक्षितः वा युष्माकं सुहृदत सखा नीलकंठ मयूरः दिवसवीगमे हिनावसाने सायंकालः इति भावः याम वासयशिष्ठिम् अध्यास्ते अधितिष्ठति। सरलार्थ ये मेघ रक्ताशोक कुलयोरयंतरे मरकतमणि भीर्मूले बद्ध्वा स्फटिकं मयपीठा सुवर्णमयी वासय दृष्टि वर्तते सायंकाले मदीयया दैतया शिंचितकंक अंकणं मनोहरैः करतलवादरैः नर्तितौ मयूरो यामधितिष्ठति। अनुवादे मेघ रक्तशोक और वकुल वृक्ष के बीच में कोमल वंश के समान कांति से युक्त मणियों की वेदिका वाली और स्फटिकमय पीठ से संपन्न सुवर्णमय वासिष्ठ बैठने का स्थान है। शब्द करने वाले कंकड़ों से मनोहर करताल बजाकर मेरी प्रियतमा से नचाया जाने वाला तुम्हारा मित्र मयूर सायंकाल में जहाँ पर बैठता है। टिप्पणी तन्मध्ये तयोर मध्यम तस्मिन् अनति प्रौढ़वंश प्रकाशैः प्र प्लस वह प्लस कतः कर्तरी अर्थे प्रौढ़ाः। यहाँ पर वह धातु का संप्रसारण और पूर्व रूप आदि होकर ऊढ़ होने पर प्रादुर्हो ढुढ़ इस वार्तिक से वृद्धि होकर प्रौढ़ शब्द बना है। अधिकाः प्रौढ़ाः अति प्रौढ़ाः कुगति प्रादय इति समासः न यति प्रौढ़ा अनति प्रौढ़ाश्च ते वंशाः अनति प्रौढ़ा वशानाम इव प्रकाशो येषां ते तैः। प्रौढ़वश की कांति पीली पड़ जाती है। अनति प्रौढ़वंश यानी कोमल वंश उसकी कांति हरी होती है। उसके समान कांति से युक्त मणि अर्थात पन्ना बद्ध्वा बद्ध प्लस कत कर्तरी अर्थे टाप स्फटिक फल का स्फटिकम फलकम यस्याः सा मयूरों को ठंडा अच्छा लगता है। अतएव उनके बैठने का स्थान भी स्फटिकमय है। सौवर्णी सुवर्णस्य विकारः सुवर्ण प्लस कण प्लस नीप वायशिष्ठे वस प्लस घय भावार्थे वासः वायस्यष्ठि सिंजा वलयम् सुभग्यैः सिंजनम् सिंजाः सिजि अव्यक्ते शब्दे इस धातु के विदादिक गण में पहे जाने वाले शिब्धिब्धाभिज्यो अंग इस सूत्र से अंग प्रत्यय हुआ है। सिज प्लस अंग प्लस टाप सिंजा भूषण के शब्द को सिंजा कहते हैं। भूषणा नाम तो सिंजिन मतम इत्यमरह सिंजा प्रधानानि वलयानि सिंजा वलयानि मध्यम पदलोपी समास शिक्षा वलयैः सुभगाः तैः तृतीय तत्पुरुष सिंज वलयैः सुभगैः। इस पाठ अंतर में सिज धातु के आत्मनेपदी होने से उससे लट के स्थान में सनक्ष होता है न कि सर्त्री प्रत्यय, इसलिए सिजद ऐसा पाठ अपपाठ है अथवा अनुदात तत्व लक्षण आत्मने पदम अनित्यम। इस अनुदात की इत संज्ञा होने से आत्मने पद होने का जो नियम है वह अनित्य है अर्थात सार्वत्रिक नहीं। अतः अनुक्तमप्युहूति पंडितो जन यहाँ पर जैसे ऊहते के स्थान पर ऊहति हुआ है उसी प्रकार यहाँ पर भी प्रश्नय पद हो गया है। तालैः यहाँ पर ताल पद का तालवादन में लक्षणा हुआ है। नर्तितः नृत प्लस ऋच प्लस कतः कर्मणि अर्थे नीलकंठः नीलकंठो यस्य सः बहुब्रीहि मयूरो वर्हिणो वर्हि नीलकंठो भुजंग भुकः इत्यमरः। मयूर मेघ के आगमन में उल्लास से जो नृत्य करते हैं इसलिए मयूर को मेघ का सुहृद कहा गया है। दिवस विगमे विगमनम विगमः वि प्लस गम प्लस अप दिवसस्य विगमः तस्मिन् याम अध्यास्ते इस अधि पूर्वक आस धातु के योग में अधिसिंहस्ता साम कर्म इस सूत्र से आधार को कर्म संज्ञा होकर द्वितीय हुई है। महोपाध्याय मलिनाथ जी का कहना है कि तत्रागारम यहाँ से आरंभ कर इस श्लोक तक कुल 5 श्लोक में मैं समृद्ध वस्तु का वर्णन होने से दाता अलंकार है और अनति प्रौढ़ वंश प्रकाश सही है इस समस्त पद में लुप्तोपमा है। उन दोनों अलंकारों का अंगांगी भाव होने से संकर अलंकार हो गया है। यहाँ स्वभावोक्ति अथवा भाविक भी नहीं हो सकते, उनमें यथास्थित वस्तु का वर्णन होता है। इसके विपरीत यहाँ पर कवि की प्रतिभा से उठाए गए तथा संबाभ्यमान ऐश्वर्यशाली वस्तु का वर्णन किया गया है। इस प्रकार पूर्वोक्त स्वभावोक्ति और भाविक अलंकार से इस अलंकार का भेद है। ऐसा अलंकार सर्वस्वकार ने भी कहा है। एभिः साधु हृदय निहितैरलक्षणैः अलक्ष्यात् द्वारोपान्ते लिखितवपुषौः शङ्खपद्मौ च दृष्ट्वा क्षामक्षायं भवनमधुना मद्योगेन नूनं सूर्यापायेन खलु कमलं पुष्यति श्वाम अभिख्याम अन्वयः। हे साधु हृदय निहितैः एभिः लक्षणैः द्वारोपान्तिः लिखितवपुषौ शङ्खपद्मौ च दृष्ट्वा नूनं मधुना मद्वियोगेन क्षामक्षायं भवनं लक्षयेथाः सूर्यपायी सति कमलं श्वाम अभिख्यामन पुष्यति खलु। व्याख्या हे साधु हे सज्जन हृदय निहितैः चितस्थापितैः अविस्मृतैर इति भावः एभिः पूर्वोक्तैः तोरणादिभिरतिः भावः लक्षणैः चिह्नैः इतरव्यावर्तकैर्धमैर इति भावः द्वारपान्ते प्रतिहारसमीपे द्वारप्राश्चयत् इत्यर्थः। लिखित वपुषौ चित्र निवेशति शरीरौ शंखपद्मौ च तत्रामकानिधि विशेषौ च दृष्ट्वा अवलोक्य नूनं सत्यं अधुना इदानीं एषु दिवसेष्विति भावः मद्युजोगेन मत्प्रवासात्मकेन विरहेण क्षामक्षायं क्षीणकान्तिः उत्सवो परमादिति शेषः भवनं मद्गृहं लक्षेथा निश्चिन्युवा कुतो लक्षणम् इति चेतत्र दृष्टान्तम् उपन्यष्यति सूर्या अपाय इति सूर्यापाय भास्करा भावि भास्करेस्तम् इति सत् इति भावः कमलम् बराबर पद्मम् स्वाम् बराबर आत्मीयम् स्वाभाविकम् इति भावः अभिख्याम् शोभा न पुष्यति न उपचिनोति खलु निश्चयेन सूर्यविरहितम् पद्मीव प्रतिविप्रयुक्तम् गृहम् न शोभत इति भावः सरलार्थः हे सज्जन पूर्वोक्तस्तोरणादेभिर्लक्षणैस्तथा द्वारपार्श्वौ युश्चित्तौ शङ्खपद्मनामधेयो निधि च त्रैलोक्य रविरहित अरविन्दम् इव येषु दिवसेषु शोभारहितम् मद्भवनम् निश्चनु अनुवाद हे सज्जन चीत में रखे गए तोरण आदि इन लक्षणों से और द्वार के दोनों ओर लिखे गए शंख और पद्म नाम वाले निधियों को देखकर सत्य ही इस समय ब्रैकेट में इन दोनों में ब्रैकेट बंद मेरे वियोग से उत्सव शून्य होने से शोभाविहीन मेरे घर को पहचान लोगे क्योंकि सूर्य के अस्त पर्वत को जाने पर कमल भी अपनी शोभा को नहीं बढ़ाता है। टिप्पणी साधु साधनोति परकर्याणि इति साधु तत्संबुधौ साध्य प्लस साध प्लस उण जो दूसरे के कार्यों को सिद्ध करता है उसे साधु कहते हैं। महाकुलकुली नार्यम सभ्यम सज्जन साधव इत्यमरः हृदय निहितैः हृदये निहितानि तैः नी प्लस धा प्लस कत कर्मणि अर्थे निहितानि लक्षणैः लक्ष प्लस ल्यूट द्वारोपान्ते द्वारयोः उपान्त तस्मिन् द्वारोपान्ते यहाँ पर एक वचन विवक्षित नहीं है इसका स्वरूप द्वारोपान्तयोः समझना चाहिए केवल छंद के अनुरोध से एक वचन किया गया है। लिखित वपुषौ लिखिते वपुषी ययोस्तौ शंख पद्मौ शंखश्च पद्मश्च शंख पद्मौ तौ इतरेतर योग द्वंद्व कुबेर की निधियों के नौ भेद है जैसे कि महापद्मश्च पद्मश्च शंखौ मकर कक्षपौ मुकुंद कुंद नीलाशश्च खरवश्च निधयो नव अर्थात महापद्म पद्म शंख मकर कक्षप मुकुंद कुंद नील और गर्भ ये नौ निधियां है। हरावली कोश में खर्द के स्थान पर वर्च लिखा गया है। मार्कंडेय पुराण में वर्च को छोड़कर कुल आठ ही निधियों का उल्लेख किया गया है। इसी पुराण में निधियों के सविस्तर लक्षण दिए गए हैं। उसमें कहा गया है कि पद्मिनी नाम की अभिदेवता लक्ष्मी है और निधियों की आधार भी वही है। प्रकृत में शंख पद्मौ कहने से शंख और पद्म की अधिष्ठाता देवता विशेष लक्षित होते हैं। यक्ष पत्नी से मंगल के लिए दरवाजे के दोनों ओर इनको चित्रित किया था। दृष्ट्वा दृश्य प्लस तत्वा अधुना अस्मिन् कालः इत्यर्थे अधुना इति निपातः एतर्हि सम्प्रति दानि मधुनाम साम्प्राप्तम् तथा इत्यमरः मद्वियोगेन वियोजनम् वियोगः बी प्लस यूज प्लस है भावे अर्थे मम वियोग तेन षष्ठी तत्पुरुष क्षाम क्षायम क्षय प्लस कतः प्लस टाप क्षामा छायो म इति निष्ठा तस्य मकारः क्षामा छाया यस्य तत बहुब्रीहि लक्षेयथा लक्ष प्लस अणिच प्लस लिंग विधौ था सूर्यापाय सूर्यस्य अपाजः तस्मिन् प्रकट षष्ठी तत्पुरुष प्रकट बन अभिख्यायम् अभिख्या नाम शोभयोः इत्यमरः पुष्यति पुष प्लस ल्यूट प्लस तीप सूर्य से रहित कमल के समान पति से रहित गृह भी शोभित नहीं होता है। इस प्रकार दृष्टांत के होने से इस श्लोक में दृष्टांत अलंकार है। दृष्टांत का लक्षण दृष्टांतस्तु धर्मस्य वस्तुनः प्रतिबिंबिनम् यह साहित्य दर्पण का है। जहाँ पर साधारण धर्म का बिंब प्रतिबिंब भाव होता है वहाँ दृष्टांत अलंकार होता है। यह साध्य धर्म और वैधर्म के भेद से दो प्रकार का होता है। प्रकृत में वैधर्म से दृष्टांत अलंकार है। यहाँ पर भवन की स्वतः सिद्ध शोभा का विनाश न होने पर भी यक्ष के विरह से मंद कांति है, फिर उसके समागस होने पर पीछे होने वाली अनुपम रमणीयता व्यंग होती है। श्लोक नंबर 17 समाप्त हुआ। श्लोक नंबर 18 गत्वा सद्यः कलभ तनुताम शीघ्र संपात हेतुः क्रीड़ा शैले प्रथम कथिते रम्यशानौ निष्णः अर्हस्यन्त भवनम पतिताम कर्तृमल अल्पाल्प भाषम कद्योतात्मि विलसितं निभाम बिन्दुद्दुन्मेषण षष्ठीम् अन्वय शीघ्र संपात हेतुः सद्यः कलभ तनुताम गत्वा प्रथम कथिते रम्यशालौ क्रीडाशैले निष्णः अल्पाल्पभाषम् खद्योता अलिविलसित निभाम सिद्युद्दुन्मे दृष्टिम् अन्तरभवन पतिताः कर्तुम् अर्हसि स्वभनमश्निश्चया अनन्तरम् करणीयम् आह गत्वे अति व्याख्या हे मेघ शीघ्र संपात हेतुः सत्वर प्रवेशार्थम् इत्यर्थः सद्यः प्रवर्तक्षण कलभतुतुनाम कलभतनुताम बराबर करिषावक शरीरत्वम् अल्पकायम इति भावः गत्वा बराबर प्राप्य प्रथम इच्छिते प्रथम कथिते पूर्वाभिहिते तस्यास्तीर इत्यादिना प्रागुदृष्टिः इति भावः रम्यशानौ मनोहर प्रस्थे क्रीड़ाशैले केलिपर्वते निष्णः उपविष्टः अल्पाल्पभाषम् स्वल्प प्रकाशाम कान्तिभिति परिहारा एति शेषः खाद्योता अलिविलसि तना निभाम् ज्योतिरङ्गण उक्तस्फुरितता सदृशीम् बिन्दुत् उन्मेषदृशी तैत्प्रकाशदृशम् गृहाभ्यन्तररोदनम् निरीक्षणयति शेषः अन्तरभवन पतिताम् भवनमध्य प्रविष्टाम् कर्तुम् विद्यायतुम् अर्हसि योग्यो भवसि। सरलार्थ हे मेघ सत्त्वप्राप्त्यर्थ करिषावकसदृशम् स्वशरीरम् कृत्वा प्रथमोदृशे क्रीड़ा पर्वते समुत्पविष्टः सन् ज्योतिरङ्गिस्फुरितशमाम् तड़ित प्रकाशरूपाः दृष्टि भवनान् अभ्यंतरे प्रवेशयितुम् हरसि। अनुवाद हे मेघ शीघ्र प्रवेश करने के लिए तत्क्षण हाथी के बचने के समान शरीर को धारण कर पूर्वोक्त सुंदर प्रस्थ वाले क्रीड़ा पर्वत में बैठे हुए तुम अल्प प्रकाश वाली और युग्नों की पंक्ति में की समान बिजली के प्रकाश रूप दृष्ट को भवन के भीतर डालो। टिप्पणी शीघ्र संपात हेतु संपतनम संपात सप्लस पत प्लस घन शीघ्र संपात शीघ्र संपात एवं हेतु तस्य षष्ठी हेतु प्रयोगे इति षष्ठी संपातः पतने वेगे प्रवेशे वेद संविदे इति शब्दार्णवः सद्य बराबर समाने हनि सद्य पतदित्यादिना निपातः अव्ययम् कलभ तनुताम् कलभस्येव तनुर्यस्य स कलभतनुः कलभतनुर्भावः कलभतनुताम् ताम् ब्रेकेट कलभतनु प्लस तल प्लस टैप ब्रेकेट बंद कलभ करीशावक इत्यमर गत्वा गम प्लस कत्वा 32 साल की उम्र वाले हाथी के बच्चे को कलभ कहते हैं। मेघ के काम रूपी ब्रेकेट इच्छा अनुसार रूप देने वाले ब्रेकेट बंद होने से हाथी के बच्चे के समान शरीर धारण करने की बात कही गई है। प्रथम कथिते प्रथमं कथितः तस्मिन् रम्यशानु रम्यः शानुर्यस्य सह तस्मिन् क्रीडा शैलः तस्मिन् ब्रैकेट मध्यम पद लोपी समास ब्रैकेट बंद निष्णः नि प्लस सद प्लस कतः सदीर प्रति इस सूत्र से प्रति को छोड़कर अन्य उपसर्ग में परिवर्ती सद के सकार के स्थान पे मूर्धन्य सकार हुआ है। अल्पा अल्पभाषम अतिशयेन अल्प प्रकारा अल्पा अल्पा प्रकारे गुणवचनस्य इति द्विरुक्ति अल्पा अल्पा भाह्यस्याह ताम प्रिया की भीति के परिहार के लिए अल्प प्रकाश वाली दृष्टि डालने की बात कही गई है। खाद्योताली विलसी तनिभाम खे ब्रकट आकाशे ब्रकट बंद द्योतनंतम इति खद्योता पंचाद्यच ख प्लस द्युत प्लस अच खद्योतो ज्योतिरी अंगणम इत्यर्थः खद्योतानाम आलिः पंक्तिः तस्याः विलसितम षष्ठी तत्पुरुष तेन सदृशी खद्योताली विलसितनि भाम ताम विलसित के स्थान में कहीं पर विलसन ऐसा ल्युट प्रत्यंत पाठ भी पाया जाता है। अर्थ में कुछ भेद नहीं। विद्युन इष्ट दृष्टि विद्युत उन्मेषः विद्युन्मेषः एवं दृष्टि ताम ब्रकट रूपक ब्रकट बल अंतर भवनम पतिताम भवनस्य अंतम ब्रकट अभ्यंतरम ब्रकट बल अंतर भवनम ब्रकट तत्पुरुष षष्ठी तत्पुरुष ब्रकट बल राजदंतादिषु परमम इति अंतः पदस्य पूर्व निपातः अंतर भवनम पतिता ताम द्वितीयाश्रिता अतीत पतीत गतास्तत् प्राप्ताः पन्नैः इति द्वितीया तत्पुरुष कर्त्रं क्री प्लस तुमुन यह अन्वय है अव्यय है। अरहसी प्लस अरह प्लस लट प्लस सिप इस श्लोक के कलब तनुताम इस समस्त पद में लुप्तोपमा खद्योताली विलसित निभाम इस समस्त पद में भी उपमा और विद्युत उन्मेष दृष्टि में इसमें रूपक है। इस प्रकार इन तीनों का अंगांगी भाव होने से संकर अलंकार हुआ है। श्लोक नंबर 19 तन्वि श्यामा शिखरी दशन पक्विबिंब धरोष्ठि मध्य क्षमा चकित हरिणी प्रेक्षणानाम निनाभि श्रोणी भारा दल शम संग सगमन स्तोपश्नभ्राह तनाभ्याम या तत्र स्वाद्यु अति विषये सृष्टि राज्ये वधातुः। अन्वय तन्वि श्यामा शिखरि दशन पक्वबिंब धरोष्ठि मध्य क्षामा चकित हरिणी प्रक्षणा निम्न नाभिः श्रोणी भारात अलसगमन स्तोक नाभ्याम युवति विषये धातुः आद्या सृष्टिरीवया स्यात्तत्र निवशे नम्रास्तः सम्प्रति दृष्टिपात फलस्य अभिज्ञानम् श्लोकद्वयेन प्रतिपादयति तन्विति व्याख्या तन्वी कृशांगिन तु पीवरीति भावः श्याम युवतिः शिखरिदशन पक्वदा डिमबीजदंता पक्वबिंबधरोष्टि परिणतबिंबफलोष्टि मध्यक्षामा छीड़ा अवलगत लग्न पदद्वयवा मध्ये अवलग्न क्षामा क्षीणा कृशोदरीति भाव चकित हरणि प्रेक्षण भीतमृग्नेन एतेष्णास्याः पद्मिनित्वं व्यञ्जने निम्ननाभि गंभीरनाभि श्रोणिभारात् नितंबभारात् अलस गमन मंदगामिनी न तु जघनदोषात् स्तनाभ्याम् कुचाभ्याम् स्तोकनभ्राः इषद्वनताः न तु शरीरदोषाद् इति भावः अतः युवतिविषये तरुणिविषये तरुणी अधिकृत्येति भावः धातुः ब्राह्मण आद्याः प्राथमिकी सृष्टिरिव शिल्पमिव स्थित इति शेषः तादृशी या स्त्री स्यात् भवेत् तत्र अन्तर्भवने प्रवेश इति शेषः तमित्युत्तर श्लोकेन संबंधः सरलार्थ कृशांगे युवतिः पक्वाद् दाढ़िं जदन्ताः विजदन्ताः कृशोदरी चपलनयन गंभीरनाभिर्नितंबन भारान् मन्मथ गामिनी कुचभारेण शवदवनता युवतिः राधिकृत्य ब्राह्मणः प्रथमं शिल्पम् इव यास्यात् तत्र मदगृहे निवस्यः अनुवाद हे मेघ कृश शरीर वाली युवती पक्के दाढ़िम के बीज के समान दांतों वाली पक्के बिंब फल के समान लाल अधरोष्ठ से शोभित पतली कमर वाली डरी हुई मृग के समान चंचल नेत्रों से शोभित गंभीर नाभि वाली नितंब के भार से धीरे धीरे चलने वाली उन्नत कुचों से कुछ झुकी हुई और युवती में ब्रह्मा जी की प्रथम रचना की समान जो स्त्री होगी वह घर में प्रवेश करो। टिप्पणी तन्वी स्लक्षण्यम दम्भ्रमम कृशम तनु इत्यमरः तनु शब्द के गुणवाचक होने से स्त्रीत्व विवक्षा में वो तो गुणवचनात् इस सूत्र से गिस हुआ है। श्यामा श्यामा यौवन मध्यस्था इत्युत्पलमाला उत्पलमाला नामक किस कोश के अनुसार श्यामा का अर्थ युवती है। कुछ विद्वान कुपोदकम बटक छाया श्यामा स्त्रीस्निग्ध भोजनम शीतकाले भवेदुष्णम उष्णम काले च शीतलम अर्थात कुएं का जल बरगद की छाया श्यामा स्त्री और धृत से स्निग्ध भोजन ये सब शीत समय में गर्म होते हैं और उष्ण समय में ठंड होते हैं। इस श्लोक के अनुसार स्त्री विशेष को श्यामा कहते हैं। किसी टीकाकार ने इसकी कुवलय दल के समान श्याम वर्ण वाली ऐसी व्याख्या कर श्यामा स्वंगम इस श्लोक में इस अर्थ की संगति की भी लगाई है। शिखरी दशना शिखराणी ब्रैकेट कोटय शांति शिखराणि शिखर प्लस इनी शिखर शैल वृक्षा अग्रवक्षा पुलक कोटिषु इति विश्वः शिखरिणो दशना ब्रकट दंताः ब्रकटवन यस्याः सा ब्रकट बहुब्रीहि ब्रकटवन नुकीले दांतों वाली यह इसका शब्दार्थ है। कुछ लोग पक्वादाडिं बीजाभम माणिक्यम शिखरम विदुः इस अभिधा चिंतामणि की उक्ति के आधार पर पके हुए दाड़िम फल के बीज सदृश को शिखर कहते हैं। पके हुए दाड़िम फल के बीज नुकीले के साथ लाल भी होते हैं। इस परिभाषिक अर्थ के अनुसरण में यह विशेषता आई। तांबूल चवर्ण आदि से भी दांत लाल होते हैं। इसी तरह इसकी भी संगति लगाई जा सकती है। शिखरी दंतों के गुण समुद्रिक में इस प्रकार दिखलाए गए हैं। स्निग्धाः शमानरूपाः शुपङ्कतयः शिखरिणः श्लिष्टाः दन्ता भवन्ति याशाः तासां पादे जगत् सर्वं ताम्बूलसरक्ति अपि स्फुटभासः समुदयाः दन्ताः शिखरिणो यस्याः दीर्घजीवति तत्प्रियः अर्थात् शिखरी दंतों वाली स्त्री ऐश्वर्य वाली होती है और उसका पति दीर्घ जीवी होता है। पक्व बिंबाधरोष्ठि बिंबस्य विकारो बिंबम पक्व च तद्बिंबम कर्मधारय अदश्च आसौ ओष्ठ अधरोष्ठ उत्तोष्ठयो समासे वा इति पररूपत्वम् पक्वबिम्ब इव अधरोष्ठो यस्यासा नासिकोदरोष्ठौ जङ्घ दन्तकर्णशृङ्गाश्च एति विकल्पेन गिप् पकाबिलम् बिम्बफल कुंदरु लाल होता है। वैसे ओष्ठ वाली इसका तात्पर्य हुआ स्वाभाविक रूप से लाल ओष्ठ वालों सामुद्रिक शास्त्र में बतलाया गया है। ओष्ठौ च निब्रणौ स्निग्धौ न अतिस्थूलौ न रोमशौ रक्तौ बिंब फलाकारौ धनु पुत्र सुखप्रदौ अर्थात जिनमें व्रण नहीं है स्निग्ध जो कि ज्यादा स्थूल नहीं न लोम वाले है और न बिंब फल के समान लाल ओष्ठ धन पुत्र और सुख को देने वाले हैं। मध्य क्षामा मध्य ब्रैकेट अवलग्ने ब्रैकेट बंद क्षाम ब्रैकेट कृष्ण ब्रैकेट बंद अवयव यस्याह सा ब्रैकेट व्याधिकरण ब्रैकेट बंद अमूर्धमस्त कात स्वादंग स्वांगाद इत्येलूक अथवा मध्य क्षामा इस प्रकार व्यस्त पदों का अर्थ हुआ कमर में पतली यानी पतली कमर वाली चकित हारिणी प्रेक्षणा चकिता चा असौ हरिणी चकित हरिणिया वा इव प्रेक्षणम यस्याह सा डरी हुई मृगी के समान चंचल नेत्रों वाली यह इसका अर्थ हुआ। स्त्री के चार भेद होते हैं पद्मिनी हस्तिनी संखिनी और चित्रिणी। पूर्वोक्त लक्षण से इसका पद्मिनीत्व अभिव्यक्त होता है। चरित्र वर्धिनी कारणी चकित हरिणी प्रेक्षणी ऐसा पाठ माना है। इसमें होता है इसमें अर्थ भेद तो नहीं है पर व्युत्पत्ति में कुछ भेद है। सो इसमें चकित हरिणवत प्रेक्षत इति ऐसा विग्रह कर कर्त्युप उपमाने इस सूत्र श्रेणी प्रत्यय करना चाहिए। चकित हरिणी प्लस प्र प्लस इक्ष प्लस ऋणी प्लस गिप निम्नाभि निम्नाह नाभिर्यसाह सा गंभीर नाभिर छिद्र वाली जिस स्त्री की नाभि गंभीर होती है उसे काम का आदेश अधिक होता है ऐसा काम सूत्र का अभिप्राय है। श्रोणी भारात श्रोण्या भार तस्माद् ब्रकट हेतु पंचमी ब्रकट बंद आलस गमन आलसम गमनम यस्याह सा नितंब के भार से धीरे धीरे चलने वाली न कि रोग आदि से यह इसका अभिप्राय है। स्तोक नभ्राह नमन शिलाह नम्राह नमः प्लस रह प्लस टाप स्तोक्तम नम्राह स्तनम भार से कुछ झुकी हुई महाकवि ने कुमार संभव में भी इसी प्रकार आवजिता किंचिदिव स्तनाभ्याम स्तनाभ्याम लिखा है। युवती विषय युनस्ति इति तिह युवन प्लस तिह युवतया एव विषयस्त अस्मिन् धातु दधात इति धातः तस्य धा प्लस त्रिच आद्याः आदौ भावाः दिगादिभ्यो यत् इति यत् आदि प्लस यत् प्लस टाप सृष्टि मृज प्लस कितिर। ब्रह्मा जी ने पहले पहल इसी युवती का निर्माण किया था। प्रायः शिल्पियों की प्रथम रचना में अतिशय प्रयत्न के कारण शिल्प निर्माण की उत्तमता देखी जाती है। इसीलिए आद्य विशेषण दिया गया है। नूनम तस्याह इसमें मुखचंद्र का सिखिनाम, ब्रह्माभारेषु केशान इसमें केशपाश का, नंदी विक्षेषु ब्रह्महलासान इसमें भ्रूलताओं का, इसमें हाथ और चरणों का तत्प्रसंग में पीछे वर्णन होगा, इसलिए महाकवि यहाँ पर मुख आदि का वर्णन नहीं किया है। यह बात समझ लेनी चाहिए। इस श्लोक में प्रथम चरण में अधर और उष्ट शब्द का पर्याय होने से आपाततः पुनरुक्ति की प्रतीति से पुनरुक्त तदाभास पक्व बिंबाग्धरोष्ठी यहाँ पर लुप्तोपमा, द्वितीय चरण में भी चकित हरणी प्रक्षणा इसमें लुप्तोपमा है, और प्रिया के वर्णन प्रसंग में सृष्टि राधेव इस उक्ति में उत्प्रेक्षालंकार है। अतः अलंकारों की निरपेक्षता से स्थित होने से संसृष्टि अलंकार है। दूसरे श्लोक में यह यक्ष उसे मेरी पत्नी जाओ जानू यह कहकर परिचय देता है। श्लोक नंबर 20। ताम जानिथाह परमित कथाम जीवितम मे द्वितीयम दुरी भूते मय सहचरे चक्रवाकी वैकाम गाढ़ोत्कंठाम गुरुषु दिवशेषु गच्छतुं बालाम जाताम मन्ये शिशिर मन्थिना पद्मिनी वान्यरूपाम। अन्वय सहचरे मयि दुरीभूते चक्रवाकीम इव परिमित कथाम एकाम ताम मे द्वितीयम जीवितम जानिथा गाढ़ोत्कंठाम बालाम गुरुषु येषु दिवसेषु गच्छत्सु शिशिरमथिना ताम पद्मिनी वा अन्य रूपाम जाताम मन्ये। व्याख्या सहचरी सहचारिणी अनेन विशेषणेन वियोगाः असमर्थत्वं व्यज्यते मयि प्रिये दुरोभूते दुरस्थिते सति चक्रवाकिम इव चक्रवाक वधुम इव दुरीभूत सहचराम इति शेषः। परमिति कथाम अल्पभाषिणी एकाम एकानिम ताम भवनाभ्यंतरवर्तिनी पूर्वश्लोके तन्वी स्यामेत्यादि विशेषणे हृमैति भावः मे मम द्वितीयम् अपरम् एतच्छ शरीर वर्ति जीवितम् व्यतिकर अतिरिक्त भावः जीवितम् इत्यनेन तस्याः नासे स्वजीवनम् अस्यापि नासेः व्यतिरिक्तम् व्यज्यते जानीयः अवगच्छेह जीवितम् समाम् मत्प्रेयसीम् जानिहिति भावः पूर्वोक्तानाम् लक्षणानाम् मन्यभावशङ्काम्याहम् गढ़ोत्कंठम इति गढ़ोत्कंठाम दृढ़ोत्सुक्याम मद्विषयः इति शेषः। यद्वा प्रबल विरह वेदनाम बालाम अष्टादश वर्षः देशियाम मुरुषु दुर्वहरेषु विरह दुखात इति च इति भावः येषु वर्तमानेषु दिवसेषु दिनेषु गच्छत्सु व्रजत्सु सत्सु शिशिरमन्थिताम् तुषार विना सति सौन्दर्यः पद्मिनीम् कमलिनीम् वा इव अन्यरूपाम् अपराकाराम् पूर्वविपरीतकाराम् जातम् संवृताम् मन्ये तर्कयामि हिमहत पद्मिनीव सा विरहेण अन्यरूप जात इति तर्कयामि। अत्र पूर्वोक्तलक्षणे किञ्चित् संवादे अपि नेयमन्येति भ्रमति तव्यम् इति भावः। सरलार्थ हे मेघ मद्विजोगेन सहचरवियोगेन चक्रवाकीमिव अल्पभाषिणीम् एकाङ्किनीम् ताम् मदीयम् परम् जीवितम् जानीहि विरहम् हत्सवेषु दिनेषु गच्छत्सु तामहम् तुषारविनाशित पूर्वरूपाम् कमलिनीम् इव रूपांतर प्राप्ताम तरकयामि। अनुवाद हे मेघ मुझ सहचर के दुर्वर्ती होने पर चक्रवाक प्रकट चक्री प्रकट बन की तरह अल्पभाषिणी और अकेली उसको तुम मेरा दूसरा जीवन जान लो। गाढ़ी उत्कंठा वाली वह युवती विरह के कारण दीर्घ इन दिनों के बीतने वाले से पंडित कमलनी की समान दूसरे ही रूप को प्राप्त हो गई होगी, मैं ऐसी तर्कना करता हूँ। टिप्पणी सहचरे सहचरति इति सहचरतास्मिन सह प्लस चर प्लस अच सहचर विशेषण से वियोग की सार्थक समर्थता व्यंग होती है। दुरीभूते अदूरम दूरम यथा संपद्यते तथा भूतः तस्मिन दूर प्लस च्वि प्लस भू प्लस कतः भावे सप्तमी चक्रवाकिम जाते रैस्त्री विषयाद उपधात इतिंगिस चक्रवाक प्लस निस रात के समय चक्रवाक और चक्रवी का वियोग संस्कृत साहित्य में प्रसिद्ध है। कहते हैं कि सीता के वियोग में रामचंद्र जी का विलाप सुनकर उन्होंने रामचंद्र का उपहास किया। तब रामचंद्र जी ने प्रत्येक रात को तुम लोगों का भी स्त्री और पुरुष में वियोग हो ऐसा श्राप दिया। यक्ष ने पत्नी की उपमा चक्रवाकी से दी है, इसलिए जैसे रात के बीतने पर चक्रवाकी का अपने प्रिय चक्रवाक से समागम होता है, उसी तरह श्राप की अवधि के बीतने पर मेरी पत्नी का भी मेरे साथ समागम होगा ऐसा अर्थ ध्वनित होता है। परमित कथायाम कथनम कथा कथम वाक्य प्रबंधे इस चतुरादि धातु से चिंत पूजित कथि कुंभित चर्चश्च इस सूत्र से अंग प्रत्यय हुआ है। कथ प्लस अंग प्लस टाप कथा परी प्लस मा प्लस कथ प्लस टाप परिमिता परिमिता कथा यस्याह सा प्रकट बहुब्रह प्रकट बन सत्य मधुर और हित के लिए परिमित कथा अर्थात अल्प भाषणी वाचा लता में शब्द असत्य अमधुर और अहित का भी प्रतिपादन हो सकता है। विरह काल में वाचालता स्वाभाविक ही भी नहीं है। द्वितीयम द्वयोह पूर्णम द्वेस्त्यह इति त्यह द्वि प्लस त्यह जीवितम जीवनम जीवितम नपुंसके भावे कतः इति कतः जीव प्लस कतः जीवनी जिनिया जानिया ज्ञा प्लस विधिलिंग प्लस थास जानिया इति पुस्तकांतर पाठः गाढ़ोत्कंठा गाढ़ा उत्कंठा यस्या साह ताम सामान्य रूप में उत्कंठा कहते हैं, उत्सुकता को गाढ़ोत्कंठा इसका अर्थ हुआ। पति के विरह से गाढ़ उत्कंठा वाली परंतु मल्लीनाथ जी उत्कंठा का अर्थ करते हैं विरह वेदना, इसमें उन्होंने कोष का प्रमाण दिया है। रागे त्वलब्ध विषये वेदना महति तूया संशोषणी तु गत्राणाम तामुत्कंठा विदुर्वधा अर्थात अभिष्ट विषय की अप्राप्ति में शरीर को सुखाने वाली तो उत्कट वेदना है, उसे उत्कंठा कहते हैं। इस प्रकार से गणोत्कंठा का अर्थ हुआ विरह की प्रबल वेदना वाली। कहीं कहीं गाढ़ोत्कंठा गुरुषु ऐसा पाठांतर है, उसको दिवसेषु का विशेषण समझना चाहिए। उसका अर्थ हुआ गाढ़ उत्कंठा से दीर्घ। बालाम यहाँ पर बाला शब्द से कौमार और यौवन के मध्य की अवस्था समझनी चाहिए, लड़की नहीं। गच्छत्सु गम प्लस लट प्लस सत्री भावे सप्तमी शिशिर मंथित मथिताम मंथम प्लस कत प्लस टाप प्लस मथिता शिशिरेण मथिता ताम तृतीया तत्पुरुष। महोपाध्याय मलिनाथ शिशिर का अर्थ शिशिर काल करते हैं, जिसका अर्थ हुआ हेमंत ऋतु। शिशिर सियादृतो भेद तुषारे शीतले अन्वयत विश्वकोश के इस प्रमाण के आधार पर शिशिर का अर्थ हिम प्रकट पाला प्रकट बन भी है, यह अर्थ समीचीन तर है। इसी प्रकार रामायण में भी हिम हतन नलिनीव पद्म शोभा तथा महाकवि रघुवंश में हिमसे कवि पतिरत्र में नलिनी पूर्व निर्दर्शनम गता इत्यादि प्रयोग देखा जाता है। पद्मिनी पद्म प्लस इनी प्लस दीप वा इव पद्वाय शब्द शब्दाह इति दंडी अर्थात वा और यथा शब्द इव शब्द के समानार्थक पर्याय हैं। उपमायाम विकल्पे वा इत्यमरह अमर की इस उक्ति के आधार पर वा का अर्थ विकल्प भी होता है। अन्य रूपाम अन्यत रूपयस्याह साताम मन्ने मनः प्लस लट प्लस इट। महाकवि ने श्लोकों को रामायण के अशोक वनिका स्थित सीता जी के वर्णन प्रसंग में हिमहत नलिनी व नष्ट शोभा व्यसन परंपराया निपिंगमाना सहचर हिते व चक्रवाकी जनक सुता कृपणम दशा प्रपन्न इस उक्ति के आधार पर पल्लवित किया है। इस श्लोक में प्रथम चरण में यक्ष पत्नी और जीवित का भेद होने पर भी अभेद अध्यवसाय अतिशयोक्ति, द्वितीय चरण में पूर्णोपमा पद्मिनी व इस चतुर्थ चरण के पद में उपमा इस प्रकार इनकी निरपेक्ष स्थिति होने से संसृष्टि अलंकार हुआ है।